الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस दर्स में हम इल्म तफसीर का मौजू पढ़ रहे हैं मुकदमा मारफ़ अल कुरआन से, जो कि मारफ़ अल कुरआन की जिल्द नंबर 1 में है। और जो आखिरी क्लास हुई थी इस सिलसिले दुरूस में पीर के दिन, तो उसमें हमने इल्म तफसीर के जो मुख्तलिफ माखज हैं या मुख्तलिफ माखज हैं जो सोर्सेज हैं इल्म तफसीर के, तो वो हमने पढ़ के मुकम्मल कर लिए थे। आखिरी और छठा, छठा और आखिरी जो सोर्स है वो तदब्बुर और इस्तिंबात था, ठीक है। यानी तदब्बुर करना, गौर करना, फिक्र करना, सोचना, सोच विचार। और इस्तिंबात का मतलब भी यही होता है कि सोच विचार करके कुछ डिराइव करना, कुछ अखज करना, कुछ नतीजा निकालना, ठीक है। तो उसको इस्तिंबात कहते हैं। तो इसकी जो बुनियादी जो उसूल था, क्योंकि सोच और तदब्बर तो हर इंसान कर सकता है ना, कि कोई भी कर सकता है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने अकल दी है और अकल से जो है वो कोई भी सोच सकता है। तो काफिर भी सोच सकता है, मुसलमान भी सोच सकता है, फासिक भी सोच सकता है, नेक इंसान भी सोच सकता है, आलिम भी सोच सकता है और जाहिल भी सोच सकता है। सोच तो फिर इट्स लाइक एन ओपिनियन, लाइक ओपिनियंस आर लाइक बेली बटन्स, एवरीवन हैज वन। तो उसी तरीके से सोच भी हर इंसान की अकल है। तो अब इसमें क्या उसूल, कोई कोई भी उसूल नहीं होंगे। तो उसूल बयान फरमा दिए थे कि ये असरारो नुकात जो के अपने तदब्बुर के नताइज में इंसान डराइव करे, तो ये उसी वक्त काबिल कबूल होते हैं जबकि वो मजकूरा बाला पांच माखज से मुतसादिम ना हो, क्लैश ना करते हो, कॉन्ट्रडिक्ट ना करते हो उन पांच माखज को, ठीक है। तब ये छठा वाला जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये मुकम्मल हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। इसराइलियात का हुक्म, इसराइलियात, ठीक है। ये क्या चीज होती है? ये आजकल का जो मुल्क है इसराइल जिसको कहते हैं, तो इसकी कोई कोई ईयात टाइप की चीज है नहीं, बल्कि इसराइलियात उन रिवायतों को कहते हैं, ठीक है। उन रिवायतों को यानी वो नरेशंस जो के लोगों से होती हुई, नरेट होती हुई, मरवी होती हुई हम तक पहुंची हैं, जो अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों से हम तक पहुंची हैं। क्योंकि अहले किताब जो हैं इनमें यहूदी और ईसाई दोनों शामिल किए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो किताबें हैं वो सबसे लीस्ट ऑल्टर्ड हैं, सबसे लीस्ट जो है वो मैनिपुलेटेड हैं। बाकी भी जैसे हिंदुओं की रामायण भी शायद किसी जमाने में हो सकता है किसी नबी के ऊपर नाजिल हुई हो, लेकिन वो इतनी बिगाड़ दी गई है, इतनी बिगाड़ दी गई है कि उसको जो है ना वो किताब यानी आसमानी किताब कहना भी दुरुस्त नहीं बनता। जिस वजह से हिंदुओं को अहले किताब नहीं कहा जाता, किसी और को, बुधा को, बुधा के फॉलोअर्स को, हो सकता है बुधा भी जो है वो कोई अल्लाह के नबी ही थे, राइट। जैसे कुछ लोगों ने साबित भी किया है रिसर्च के जरिए से, लेकिन बुधा के ऊपर जो भी नाजिल हुई वो इतनी ज्यादा जो है वो खराब हो चुकी है कि उसको जो है वो किताब के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सिर्फ तौरात और इंजील को, जिसको बाइबल और ओल्ड टेस्टामेंट वगैरह कहा जाता है। तो इसराइलियात उन रिवायतों को कहते हैं जो अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों से हम तक पहुंची हैं। पहले जमाने के मुफस्सरीन रहिमहुमुल्लाह की आदत थी कि वो किसी आयत के ज़ेल में यानी उसके तहत उसके एक्सप्लेनेशन में हर किस्म की वो रिवायात लिख देते थे जो उन्हें सनद के साथ पहुंची थी। यानी अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला ने बयान फरमाई, या जो है वो क्या नाम था उनका, काब अहबार रहमतुल्ला अलैह ने बयान फरमाई, उनसे उनके उस्ताद ने बयान फरमाई थी, उनसे उनके उस्ताद ने बयान फरमाई थी। तो सनद के साथ जो है वो जो भी पहुंचती थी उनको वो लिख दिया करते थे। उनमें बहुत सी रिवायतें इसराइलियात भी होती थी, ठीक है। सनद तो सही है ना, ठीक है ना, तो फिर वो लिख देते थे। तो अब जो है ना, वो उनमें से इसराइली रिवायात भी होती थी, इसलिए उनकी हकीकत से वाकिफ होना भी जरूरी है, यानी हमारे लिए जरूरी है कि इसराइलियात क्या चीज होती है भाई, उनकी हकीकत से वाकिफ होना चाहिए हमें। उनकी हकीकत यह है कि बाज़ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और ताबईन रहमहुल्लाह पहले अहले किताब के मजहब से ताल्लुक रखते थे, बाद में जब वो मुशर्रफ ब इस्लाम हुए और कुरान करीम की तालीम हासिल की तो उन्हें कुरान करीम में पिछली उम्मतों के बहुत से वो वाकयात नजर आए जो उन्होंने अपने सबका मजहब की किताबों में भी पढ़े हुए थे। चुनाचे वो कुरानी वाकयात के सिलसिले में वो तफसीलात मुसलमानों के सामने बयान करते थे जो उन्होंने अपने पुराने मजहब की किताबों में देखी थी। ठीक है ना, नेचुरल सी बात है, आपने पहले से जो है वो किसी चीज को सुना हुआ हो और आप जो है वो नई किताब के अंदर भी उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे तो आप उन लोगों को बताएंगे ना, जो लोग वाकिफ नहीं है इसके बारे में आप उनको बताएंगे। यही तफसीलात इसराइलियात के नाम से तफसीर की किताबों में दाखिल हो गई हैं। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने, जो बड़े मुहक्किक मुफस्सरीन में से हैं, यानी बड़े रिसर्च ओरिएंटेड तहकीक करने वाले मुफस्सरीन में से हैं, उन्होंने लिखा है कि इसराइलियात की तीन किस्में हैं। नंबर एक, वो रिवायात जिनकी सच्चाई कुरान और सुन्नत के दूसरे दलाइल से साबित है, मसलन फिरौन का गर्क होना और मूसा अलैहिस्सलाम का कोहे तूर पर तशरीफ ले जाना वगैरह, है ना, तो ये तो कुरान मजीद में भी है और ये इसराइली रवायात से भी ये बातें पहुंची हैं। नंबर दो, वो रिवायात जिनका छूट होना कुरान सुन्नत के दूसरे दलाइल से साबित है, मसलन इसराइली रिवायात में ये मजकूर है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी आखिरी उम्र में माआज़ुल्लाह अल्लाह की पनाह मुर्तद हो गए थे, नाउज़ बिल्ला है, अल्लाह के पैगंबर जो हैं वो मुर्तद हो गए थे, काफिर नाउज़ बिल्ला, राइट। अब ये तो इन लोगों का हाल है ना, तो इन्होंने ये चीज़ भी आगे नकल कर दी, तो इसकी तरदीद कुरान करीम से साबित है, इरशाद है कुरान करीम के अंदर, वमा कफरा सुलेमानु वलाकिन शयातीन कफरू, के सुलेमान अलैहिस्सलाम काफिर नहीं हुए थे, उन्होंने कुफर नहीं किया था बल्कि शयातीन ने कुफर किया था। ठीक है, इसी तरह मसलन इसराइली रवायात में मजकूर है कि माआज अल्लाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने सिपे सालार औरिया की बीवी से जिना किया था, नाजायज ताल्लुक जो है वो अपने, यानी उसकी बड़ी लंबी स्टोरी है कि ऐसा किया वैसा किया फिर ऐसे झांसे में दिया वगैरह, उल्टे सीधे इन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर तोहमत लगा दी, या उसे मुख्तलिफ तदबीरों से मरवा कर फिर उसकी बीवी से निकाह कर लिया था, तो ये भी खुला झूठ है और इस किस्म की रिवायतों को गलत समझना लाजिम है। ठीक है, अब ये जो इनकी किताबें गैर महफूज रही हैं, इनके जो रबायून ने और अखबार ने जो इनको चेंज कर दिया, तो यही इसी किस्म की चेंजेस है ना, कि उल्टा जो है वो नबियों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया या कोई और इस किस्म की बात बना दी जो कि अल्लाह ताला ने तो नहीं कही थी। ठीक है, हुक्मों को तब्दील कर दिया, अल्लाह ताला का हुक्म जो है वो जैसे ये जो जिना का जो उसकी जो सजा थी वो रजम, वो इनकी शरीयत में भी थी, तो इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक यहूदी मर्द और औरत ने जो है वो ये वाला गुनाह किया था, तो अब उनको क्या सजा दी जाएगी, क्योंकि हुकूमत तो मुसलमानों के पास थी ना, मदीना तैयबा की। ठीक है, और ये जुर्म आया भी मुसलमानों के पास ही रिपोर्ट हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम के पास ही वो गिरफ्तार करके लाए गए थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनको जो है वो अच्छा इन्हीं की शरीयत के मुताबिक सजा दी जाएगी। तो अब जो है ना, वो उनसे तौरात मंगवाई गई, तो तौरात को पढ़ने वाला जो इनका आलिम था यहूदियों का, क्योंकि इब्रानी नबी अलैहिस्सलाम को नहीं आती, नबी अलैहिस्सलाम की अरबी भी पढ़नी नहीं है ना, उम्मी, नबी अलैहिस्सलाम उम्मी थे, तो वो तो इब्रानी में थी, तो वो यहूदी के आलिम ने पढ़नी शुरू करी, तो जहां पर रजम का हुक्म था ना, वो उसको उसने अपने हाथ से छुपाने की कोशिश करी। पीछे जो है हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि पहले यहूदी थे अब मुसलमान हो गए थे, वो खड़े हुए थे, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इनसे कहिए कि अपने हाथ को हटाओ, ये जो तुम छुपा रहे हो ना, इसको हटाओ। ठीक है, तो वो जुबानी क्या कह रहा था कि हमारे यहाँ तो ये इसकी सजा होती है कि उनको जो है ना, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शायद उसने कहा कि गधे के ऊपर बिठा करके है ना, मुंह काला करके इसको जो है वो गलियों के अंदर फिराओ इनको, ताकि ये खूब जलील और रसवा हो जाए। ठीक है ना, लेकिन इबारत के अंदर जो है वो ये लिखा हुआ था, उसको रजम करना है। इस तरीके से ना अल्लाह के हुक्म को ये तब्दील करते थे, अल्लाह के हुक्म को मानने की बजाय अपनी तरफ से जो है वो निकाला करते थे। जो गरीब होता था उसको तो पूरी सजा देते थे, और जो अमीर होता था उसको जो है ना उसको कम सजा देते थे या देते ही नहीं थे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अपनी किताबों में तहरीफात करी, अकीदे की भी तहरीफात करी और यानी अहकाम की भी तहरीफात करी। तीसरी, और यही कोशिश जो है वो अभी इस दीन इस्लाम के साथ भी कोशिश में लगे हुए हैं कि दीन इस्लाम में भी इसी तरह की तहरीफात हो जाए, किसी तरीके से पूरे कर नहीं सकेंगे इंशाल्लाह। तीसरी किस्म की इसराइलियात कौन सी होती हैं? वो रिवायात जिनके बारे में कुरान सुन्नत और दूसरे शरई दलाइल खामोश हैं, जैसे कि तौरात के अहकाम वगैरह। तो ऐसी रिवायात के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है कि उनके बारे में सुकूत इख्तियार किया जाए, ना उनकी तस्दीक की जाए और ना तकजीब की जाए। अलबत्ता इस मसले में उलमा का इख्तलाफ है कि आया ऐसी रिवायात को नकल करना जायज़ भी है या नहीं है, यानी क्या इसी ऐसी रिवायात को जो कि हमारी शरीयत से नहीं टकराती हैं, क्या आगे हम लोगों को बता सकते हैं? इसके बारे में उलमा का इख्तलाफ है। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने कौले फैसल यानी बिल्कुल डिसाइडिंग जो बयान फरमाया है वो ये है कि उन्हें नकल करना जायज़ तो है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि शरी एतबार से वो हुज्जत नहीं है। ठीक है, तो जब शरीयत में उनका कोई नफा नुकसान नहीं है, नफा नहीं है, जब शरीयत में कोई नफा नहीं है तो फिर बेफायदा चीज़, और मतलब बेफायदा चीज़ को बयान करने का क्या फायदा है? ठीक है, और मोमिन की तो शान यही है कि जो चीज़ क्या है वो हदीस मुबारक ना कि हुस्नुल इस्लाम, हुस्नुल इस्लाम अल मरई क्या है, इट्स एक आदमी के इस्लाम के हुस्न में से ये है, मिन हुस्न इस्लाम मरई यानी क्या है वो के ला यानी से जो है ना वो तरकहू माला यानी ही तरकहू माला यानी ही है ना, कि वो तर्क कर दे जो फायदेमंद नहीं है, जिसका कोई उसके लिए पर्पज नहीं है, मानी नहीं है, उसको वो तर्क कर दे। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर जंपिंग फ्रॉम हेयर टू देयर और मुस्तकिल की वीडियोस देखते रहना, तो ये तो फिर इस्लाम को, एक इंसान के इस्लाम को जो है वो ख़राब कर देने का अमल है। तो हम तो यही वाला काम करते हैं, तो फिर हमारे हुस्न इस्लाम इन बारी कहाँ से आएगा हमारे पास। बहरहाल ये पढ़ लिया हमने इसराइलियात के बारे में, तो इसमें मज़ीद तफसील की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा इसकी रेलिवेंस है भी नहीं। अगला टॉपिक तफसीर कुरान के बारे में एक शदीद गलत फहमी, ये बड़ा ही अहम टॉपिक है क्योंकि हम गलत फहमियों के ही दौर के अंदर जिंदा हैं। इल्म कम है और राय जनी और अकल परस्ती और नफ्स परस्ती ये अपने उरूज के ऊपर है, तो हमें अपने गलत फहमियों के बारे में पता चलेगा और हमारी नीयत होगी उनको दुरुस्त करने की, तब जो है वो हम यानी सही हो सकेंगे, अपनी इसलाह कर सकेंगे, हमारी फहम ठीक होगी, तभी हमारा अमल भी ठीक होगा। ठीक है, तो एक बहुत ही अहम तरीन टॉपिक है, पीछे भी इस तरह का एक टॉपिक गुजर चुका है जिसको हम पढ़ चुके हैं। तो तफसीर कुरान के बारे में शदीद गलत फहमी, मुफ्ती तजी उस्मानी दामबरकात तो हम फरमाते हैं कि मस्कूरा बाला तफसील से ये बात वाज़ह हो गई होगी, उम्मीद है कि हो गई होगी सबके जहन में, कि कुरान करीम की तफसीर एक इंतहाई नाजुक और मुश्किल काम है जिसके लिए सिर्फ अरबी जुबान जान लेना काफ़ी नहीं है बल्कि तमाम मुतअल्लिका उलूम में महारत जरूरी है। ठीक है, यानी तफसीर लिखना, तफसीर करना कुरान मजीद की आयात की, तो इसके लिए जो है ना वो ये सारे उलूम यानी कुरान मजीद, हदीस मुबारका, सहाबा कराम के आसार और जो है वो अकवाल और अरबी जुबान की गहराई, ठीक है, और फिर जाहिर है आखिर में तदब्बुर और इस्तिंबात की सलाहियत, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। चुनांचे उलमा ने लिखा है कि मुफस्सिर कुरान के लिए ज़रूरी है कि वो अरबी ज़ुबान के नहव व सर्फ और बलागत व अदब के अलावा इल्म हदीस, उसूल फ़िक़ा व तफसीर और अकायद व कलाम, इल्मुल अकायद और इल्मुल कलाम प्रीटी मच एक ही चीज़ को इल्मुल अकायद और इल्मुल कलाम कहते हैं, का वसी व अमीक इल्म रखता हो, यानी उसके इल्म के अंदर वसअत भी हो, लेंथ एंड ब्रेथ भी उसकी यानी उसके इल्म में कसरत भी हो और उसके इल्म के अंदर जो है वो उमुक भी हो। उमुक जो है वो डेप्थ को कहते हैं, ठीक है, डेप्थ को कहते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा बॉडी ऑफ वाटर है लेकिन उसकी डेप्थ कोई नहीं है, तो उसके तूल व अर्ज तो बहुत ज्यादा है लेकिन डेप्थ कोई नहीं है। ओशन जो होता है वो उसकी डेप्थ भी बहुत ज्यादा होती है और उसका जो है वो तूल व अर्ज भी बहुत ज्यादा होता है। तो इल्म भी गोया के ऐसा ही ऐसी चीज है कि जिसके अंदर डेप्थ के मतलब क्या होता है, तूल व अर्ज का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के नॉलेज के लिए है ना। आपको बड़ी चीजें याद हैं, आपको रट्टे लगे हुए हैं, आपको जो है वो शेर व शायरी याद है बहुत सारी, आपको जो है वो बहुत सारे यानी हिस्ट्री में क्या हुआ था, ज्योग्राफी के अंदर क्या है सब कुछ। तो फिर डेप्थ क्या चीज होती है, डेप्थ कहते हैं, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी इसको कहते हैं, तफक्कुह, फिका, समझ, ठीक है। तो दोनों चीजें मुफस्सिर के लिए जरूरी हैं क्योंकि जब तक इन उलूम से मुनासिबत ना हो इंसान कुरान करीम की तफसीर में किसी सही नतीजे तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है। अभी तो आप ये स्टेटमेंट्स सुन लें, फिर आगे इंशाल्लाह इसकी मजीद भी तहकीक में जाएंगे, तफसील में जाएंगे। अफसोस है कि कुछ अरसे से मुसलमानों में ये खतरनाक वबा चल पड़ी है कि बहुत से लोगों ने सिर्फ अरबी पढ़ लेने को तफसीर कुरान के लिए काफी समझ रखा है। चुनाचे जो शख्स भी मामूली अरबी जुबान पढ़ लेता है वो कुरान करीम की तफसीर में राय जनी शुरू कर देता है, अपनी राय दाखिल करना जो है वो शुरू कर देता है। बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि अरबी जुबान की नहायत मामूली शुद्ध बुद्ध रखने वाले लोग, जिन्हें अरबी पर भी मुकम्मल उबूर नहीं होता, वो सिर्फ मन माने तरीके पर कुरान मजीद की तफसीर शुरू कर देते हैं, बल्कि पुराने मुफस्सरीन की गलतियां निकालने के दरपे हो जाते हैं कि वो जो है ना अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो सही नतीजे पे नहीं पहुंचे थे, और जो है वो हजरत काजी सनाउल्ला पानीपति रहमतुल्लाह अलैह जो है ना वो सही नतीजे, और अल्लामा इब्ने कसीर से ये वाली गलती हो गई, और नाउज़ बिल्ला सहाबा तक भी पहुंच जाते हैं। अब अल्लामा इब्ने अब्बास, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु से नाउज़ बिल्ला ये गलती हो गई, ये कोताही हो गई, ठीक है। तो पुराने मुफस्सरीन की गलतियां निकालने के दरपे हो जाते हैं, यहां तक कि बाज़ सितम ज़रीफ़ तो सिर्फ तर्जुमे का मुतालिया करके अपने आप को कुरान का आलिम समझने लगते हैं और बड़े बड़े मुफस्सरीन पर तनकीद करने से नहीं चूकते, ठीक है। जैसे कि आजकल बहुत आम मिजाज बना हुआ है दीनदारी के साथ, ठीक है ना। अब ये जो इंजीनियर साहब, इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो है वो आजकल बड़े मशहूर हुए हुए हैं, बल्कि पता नहीं क्या आजकल जरा जरा खामोश हो गए हैं कुछ, उनको लगता है ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि आप जो है ना थोड़ा सा लो प्रोफाइल में चले जाएं। इस बार नहीं आ रही उनकी इस तरह की वीडियोस बहुत ज्यादा, अब नहीं आ रही, पहले एकदम से बहुत आनी शुरू हो गई थी पिछले साल। बहरहाल आते रहते हैं इस तरह के, कोई और आ जाएगा कुछ दिन के बाद, कोई और आ जाएगा, बहरहाल अल्लाह रहम करे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखें जब तक हम पूरे के पूरे दुनियादार थे ना तो उस वक्त जो है किसी के पास टाइम ही नहीं था कुरान मजीद को पढ़ने का, कुरान मजीद की जो है वो अपनी तफसीर रायजनी करने का। ये तो दीनदारी का जो मिजाज आया है तब जो लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया है ना, लेकिन दीनदारी का मिजाज तो आ गया लेकिन जो असल दीन का मिजाज है ना वो नहीं आया, क्योंकि दीन का मिजाज जो है ये तो आजजी और इनकिसारी है, अपने आप को कम समझना, अपनी हकीकत को पहचानना कि मैं तो किसी काबिल नहीं हूं, ठीक है, कि मैं तो यानी मेरी क्या हैसियत, मुझे तो इल्म ही नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं, मैं कैसे जो है वो अल्लाह की किताब की जो है वो अपनी तरफ से तफसीर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो तरबियत से आता है ना, ये तो हमारी स्लैंग में कहते हैं कुट लगाने से आता है, जब कुट लगती है ना अपनी मैं मरती है, अपनी अनानियत जो है ना वो जरा कम होती है, ठंडी होती है, नफ्स को जो है वो जरा सुकून मिलता है, ठीक है, उसके बाद फिर ये सारी चीजें आती हैं। अगर आपकी कोई तरबियत ही कोई नहीं हुई, अगर आपकी किसी ने कुटी नहीं लगाई, या किसी भी तरीके से अल्लाह ताला ने आपके जो है ना वो नफ्स की यानी नहीं करी, तो फिर आपके पास जो इल्म है ये सारा का सारा इल्म जो आप पढ़ रहे हैं, जो इधर से किताब पढ़ ली, उधर से किताब पढ़ ली, उधर से किताब पढ़ ली, ये तकब्बुर के बढ़ने का सबब बनता है, ठीक है ना। आपकी मालूमात में इजाफा हो रहा है, आप अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं कि हाँ अभी मैं तो फिर ये भी कर सकता हूँ, भी कर सकता हूँ, ठीक है। तरबियत से क्या होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है मामला, तरबियत जब साथ होती है ना तालीम के, ठीक है, एक्चुअली अच्छी तरबियत जब साथ होती है तालीम की, वरना तरबियत तो हर तालीम के साथ होती है, ये भी एक समझाने की जरूरत पड़ रही है इस चीज को भी। एवरी तालीम कम्स विद तरबियत, एवरी तालीम कम्स विद तरबियत, देर इज नो सच थिंग एज तरबियत अलग तालीम अलग, ये है होता ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। द ओनली डिस्कशन इज वेदर पॉजिटिव तरबियत और नेगेटिव तरबियत, ठीक है ना। तो जो तालीमी निज़ाम लॉर्ड मैकॉले का और अमेरिका का और कैम्ब्रिज का और ऑक्सफोर्ड का और जो है वो आपके अमेरिकी सिस्टम्स का, नॉन मुस्लिम्स का जो तरीक़ा तालीम है, उसमें भी तरबियत हो रही होती है, लेकिन वो तरबियत क्या हो रही होती है, तकब्बुर को बढ़ाने वाली तरबियत। तो वहाँ पे नॉलेज आती है, इंफॉर्मेशन आती है, तकब्बुर बढ़ता है। हमारे दीन की तरबियत क्या होती है, जो असल में दीनी मिजाज है, वो क्या होता है कि जितना इल्म आएगा उतना इंसान अपने आप को कमतर समझेगा, उतना उसके सामने अपनी जहालत खुलती है और अपनी आजिजी का उसके अंदर इकरार आता है, और उतना जो है ना वो अपने आप को यानी बेबस समझता है। अल्लाह की भी अजमत खुलती है, अल्लाह वालों की भी अजमत उसके सामने खुलती है, और वो राइट तो ये पॉजिटिव तरबियत होती है, ये दीनी जो प्रॉपर निज़ाम है उसके जरिए से होता है। तो अब नेगेटिव तरबियत पा रहे हैं तो फिर उसके बाद ऊपर से जो है वो कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया, तफसीर की कोई किताबें पढ़ ली, तो फिर बंदे ने फूलना ही है ना उसके बाद, फिर और क्या करना है। इसी वजह से जितना ज़्यादा इल्म होगा और उस निज़ाम से तरबियत हुई भी होगी, उतना ज़्यादा जो है वो उसके अंदर ना झुकने वाली सिफत पैदा हो चुकी होगी, ठीक है। और जितना अच्छे तालीमी इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकला होगा, जितने अच्छे तालीमी इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकला होगा, उतना ज्यादा उसके अंदर तकब्बुर होगा, ठीक है ना। हम समझते हैं ना कि जी जी मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए पढ़ने के लिए, और मेरा बेटा जो है, मेरी बेटी जो है, वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाए, तो उस तालीमी निज़ाम की अच्छी यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, ज्यादा तकब्बुर, ज्यादा इंडोक्ट्रिनेशन, वो ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो आपको अपने निजाम के अंदर और अपने तौर तरीके के अंदर इंडोक्ट्रिनेट करने में कामयाब होते हैं। और जो है वो जरा पीली रोशनी वाले, या तो या पता नहीं वो कौन सी थी, पीले यूनिफॉर्म वाले स्कूल हैं, या हमारे जैसे अभी एक दोस्त भी बैठे हुए थे साथ, उनको भी यार बता रहा था कि हम भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन हमें 8वीं जमात तक तो मुझे याद पड़ता है, मुझे नहीं पता था कि मीडियम का मतलब जो है वो स्मॉल मीडियम, लार्ज वाला मीडियम है, या इंग्लिश मीडियम का मतलब होता है द मीडियम ऑफ एजुकेशन इज इंग्लिश, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। ऐसे स्कूल से पढ़ के निकले हम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन फिर भी इतनी सारी जो है ना वो इंडोक्ट्रिनेशन हो चुकी थी कि हमारे हजरत को अच्छी खासी कुट लगानी पड़ी दिमाग सीधा करने के लिए, और नाम तो निकले थे, जब दीन की तरफ आए हमने कहा सबको ठीक कर देना है, अभी तो सबको ठीक कर देंगे, अभी जो है ना अभी तो बस आने दो इन मौलवियों को हमारे सामने, सारा बिगाड़ी मौलवियों का मचाया हुआ है दुनिया के अंदर, अब इन मौलवियों को हम ठीक कर देंगे, क्योंकि हम पहले से ठीक होकर के आए हुए हैं स्कूल सिस्टम से। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बचा लिया, अल्लाह ताला बचाए रखे मौत तक, ठीक है। नई रोशनी स्कूल और पीले यूनिफॉर्म वाला स्कूल, ठीक है। तो जितना बुरा स्कूल होगा ना इस निज़ाम वाला, अल्लाह का शुक्र अदा करें, यही तो सारा का सारा। बहुत सारी खवातीन जो है लिखती हैं, भाई हम कैसे करें होम स्कूलिंग, हम कैसे करें होम स्कूलिंग, हम नहीं कर सकते होम स्कूलिंग, हम हमारे घर के हालात खराब, हमारे घर के ये खराब, हमारे घर के वो खराब। तो भाई आप अपना स्टैंडर्ड तो सेट करें ना पहले, आप चाहते हैं कि अपने बच्चे के लिए, ठीक है ना। द मोर इंफॉर्मेशन यू फीड योर किड, यू थिंक दैट इज सक्सेस, है ना, उतनी अच्छी जो है वो स्कूलिंग होगी। अब मेरे घर में तो इतने बुरे हालात हैं, मैं तो इतनी परेशान हूं, मैं तो इतनी मजबूर हूं, मैं कैसे अपने बच्चों को वो सारी इंफॉर्मेशन फीड करूंगी जो कि दूसरी औरतें कर रही हैं जिनके घर के हालात खराब नहीं है, राइट। तो अब ये जाहिर सी बात है, अब आप ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स फीड करने को जो है वो अपने बच्चे के लिए कामयाबी की जमानत समझती हैं, और उसको जो है ना वो यानी अच्छी स्कूलिंग और अच्छी एजुकेशन समझती है, तो जाहिर सी बात है आप तो नहीं कर सकती होम स्कूलिंग। तो भाई अपने अपनी सोच के जाविये को तब्दील नहीं करोगी तो तुम नहीं कर सकती होम स्कूलिंग। ये तो नहीं होता ना कि 1.5 इंच जो है वो आपने सोच के जाविये को तब्दील किया और 97% जो है ना, 98.5% जो है आप उसी तरीके की सोच है आपकी, और थोड़ा सा 1.5 इंच जो है वो आपने थोड़ी सी तब्दील कर लिया तो आप चाहती हो होम स्कूलिंग करना। भाई आपकी वही सोच है तो आप उस क्राइटेरिया के ऊपर तो नहीं चल सकती ना, क्राइटेरिया चेंज करो ना अपना, ठीक है। अब चाहते हैं जो स्कूल में जितनी एजुकेशन मिल रही है किसी दूसरे के बच्चे को, एजुकेशन कौन सी वाली एजुकेशन, जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल रहे हैं, जितना उनके जाना रगड़ा लगाया जा रहा है स्कूल के अंदर, मैं तो अपने घर में वो रगड़ा लगा ही नहीं सकती, मैं तो अपने घर के अंदर वो सारी चीजें उसको सिखा ही नहीं सकती, तो मैं तो कर ही नहीं सकती, तो चलो मरने दो फिर उसको, उसको रूहानी मौत मरने दो स्कूल के अंदर, रूहानी मौत मरने दो उसको उस वाले सिस्टम के अंदर, फिर क्या फिक्र कर रही हो, खामखा की फिक्र करने की जरूरत तुम्हें कोई नहीं है। तो हमारे तो सोच ही, अब सोच ठीक करने के लिए कोई बात समझाए चले जा रहे हैं, हमने उसकी बात सुननी नहीं है, हमने उसकी बात पढ़नी नहीं है, पता नहीं क्लास में तो आ जाते हैं लेकिन इसमें भी जो है वो सुन रहे होते हैं कि नहीं सुन रहे होते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, हम तो अलहमदुल्ला आपको देखते भी नहीं है इसके अंदर कि क्या कर रहे हैं बैठ करके क्लास के अंदर, लिख करके चीजें भेजते हैं, समझाते हैं, दलाइल होते हैं उसके अंदर, लेकिन पढ़ा ही नहीं होता, पढ़ते ही नहीं उन दलाइल को, हर वक्त जो है वीडियोस देखे चले आ रहे हैं, इधर की वीडियो उधर की वीडियो उधर की वीडियो इधर की वीडियो, इधर खत्म इधर खत्म, उधर इधर इधर उधर, बिल्कुल चौपट नास, हमारी वालदा मरहुमा कहती हैं चौपट नास, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फिर उसके साथ फिर यही करेंगे ना, जब कुरान हाथ आएगा तो कुरान की भी अपनी मनमर्जी की तफसीर क्या करेंगे। तो बहरहाल ने तो इस किताब को पढ़ना है, आपको सुनाना है, तो फरमाते हैं कि अरबी जुबान की नहायत मामूली शुद्ध-बुद्ध रखने वाले लोग भी, जिन्हें अरबी पर भी मुकम्मल उबूर नहीं होता, वो सिर्फ मनमाने तौर पर कुरान की तफसीर शुरू कर देते हैं, बल्कि पुराने मुफस्सरीन की गलतियां निकालने के दरपे हो जाते हैं, जैसे आज यानी उलमाए कराम की गलतियां निकालने में दरपे हो जाते हैं, इसी तरह यहाँ तक कि बाज़ सितम ज़रीफ़ तो सिर्फ तर्जुमे का मुताला करके अपने आप को कुरान का आलिम समझने लगते हैं, और बड़े बड़े मुफस्सरीन पर तनकीद करने से नहीं चूकते। खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये एक इंतहाई खतरनाक तर्ज अमल है जो दीन के मामले में नहायत मोहलिक गुमराही की तरफ ले जाता है। मोहलिक का मतलब होता है हलाक कर देने वाला, किलर, किलर, उसको मोहलिक कहा जाता है उर्दू जुबान के अंदर। तो ऐसी गुमराही जो कि हलाक कर दे, और ये कौम क्या मतलब हलाक करना, रूहानी तौर पर हलाक कर दे, जिस्मानी तौर पर यह गुमराही हलाक नहीं करती, खाली जिस्मानी तौर पर करती है, वो स्लो पॉइजन हो रहा होता है, जिस्म भी तबाह हो रहा होता है, लेकिन रूहानी तौर पर तो इमीडिएट हलाकत होती है इसके अंदर। दुनियावी उलूम और फनून के बारे में हर शख्स इस बात को समझ सकता है, अब हजरत दुनियावी पैरेलल से इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हर शख्स बात को समझ सकता है कि अगर कोई शख्स महज अंग्रेजी जुबान सीख कर मेडिकल साइंस की किताबों का मुताला कर ले, तो दुनिया का कोई साहिब अकल उसे डॉक्टर तस्लीम नहीं कर सकता, और ना अपनी जान उसके हवाले कर सकता है, जब तक कि उसने किसी मेडिकल कॉलेज में बाकायदा तालीम और तरबियत हासिल ना की हो। इसलिए कि डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ अंग्रेजी सीख लेना काफी नहीं है, बल्कि बाकायदा डॉक्टरी की तालीम और तरबियत हासिल करना जरूरी है। इसी तरह ठीक है, तो डॉक्टर, अच्छा, आपसे चले सवाल भी पूछते हैं, आप लोग भी बिल्कुल यानी नॉन पार्टिसिपेंट के तौर पे तो और भी मुश्किल हो जाती है बात समझना। तो डॉक्टर केस हम क्यों नहीं करते ये काम डॉक्टर के साथ, बहुत सादा सा सवाल है, बहुत सादा सा जवाब चाहिए इसके लिए कि हम अपनी जान डॉक्टर के हवाले क्यों नहीं करते, जब तक उसके पास सनद ना हो, जब तक उसके पास जो है वो डिग्री ना हो, जब तक उसने जो है वो मेडिकल बोर्ड से जो है वो क्वालिफाई ना किया हो, तो हम क्यों नहीं हवाले करते अपनी जान उसके। जी बहुत ही सादा सा जवाब था, बिल्कुल, जान महबूब है, जान अजीज है, जान की अहमियत होती है, ठीक है। दीन क्यों हवाले कर देते हैं हम इंजीनियर साहब के, चाहे वो मिर्जा साहब हों, चाहे जो है वो साहिल अदीम साहब हों, चाहे जो है वो कोई और इस किस्म के हों, क्या नाम था उनका जिनके बारे में पिछली क्लास में बात हो रही थी, वो जो अमरीका में बैठे हुए आजकल हैं, तो दीन क्यों हवाले कर देते हैं उनके, क्योंकि दीन की अहमियत नहीं, ठीक है ना गांधी, राइट, दीन की अहमियत नहीं, चलता है भाई कोई बात नहीं, इधर से गलत हो जाएंगे कहीं और चले जाएंगे, या गलत हो भी गए तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। डॉक्टर के पास जाएंगे भाई, अगर कोई क्वेक डॉक्टर होगा, कोई जाली डॉक्टर होगा, तो हम कहते हैं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, उससे जो है ना वो टीका लगवा के आ जाओ, उससे जो है वो सर्जरी करवा के आ जाओ, कुछ नहीं होता है ना, कोई बात नहीं, उसने अगर मेरा केस खराब कर दिया तो मैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास चला जाऊंगा अपना केस ठीक करवाने के लिए, कहते हैं इस तरीके से, सोचते हैं इस तरीके से, हरगिज नहीं, क्योंकि वी कैन नॉट इवन टेक ए सिंगल रिस्क, हम एक रिस्क भी नहीं ले सकते अपने जान के मामले में, अपने जिस्म के मामले में, लेकिन जहां पर रूह की बारी आती है, जहां पर आखिरत का मामला आता है, वहां पर रिस्क ही रिस्क, वो कोई बात नहीं जी, सब चलता है जी, कुछ नहीं होता जी। ठीक है, मसला सारा का सारा ये है, असल मसला सारा का सारा ये है। और ये मसला जो है वो अवाम उन्नास का मसला है कि अवाम जो है वो दीन को अहमियत नहीं देती, अवाम आखिरत को अहमियत नहीं देती। जब अवाम अहमियत नहीं देती यानी इंसान अहमियत नहीं देते, तो परवरदिगार फिर क्यों डॉक्टर प्रोवाइड करें भाई, ऑथेंटिक सर्टिफाइड क्वालिफाइड दीनी डॉक्टर्स क्यों प्रोवाइड करें जब आपको चाहिए ही नहीं। अनुलज़िमुकुमुहा वअन्तुम लहा कारिहून, तुम जो है वो कराहत कर करते हो डॉक्टर के पास, मेरी रूहानी डॉक्टर्स के पास जाने के लिए, और हम तुम्हारे ऊपर जो है वो रूहानी डॉक्टर थोपते रहे तुम्हारे लिए। नहीं, तुम्हें तो चाहिए नहीं रूहानी डॉक्टर, हम क्यों दें। ठीक है, मसला सारा का सारा ये है। फिर उसके ऊपर बाकी सारी चीजें जो है ना वो फुरुआत में आती हैं। असल जो जड़ है मसले की वो ये है, हमारे अंदर तलब नहीं है दीन की, हमारे दिलों के अंदर दीन की अहमियत नहीं है यानी आखिरत की अहमियत नहीं, इस वजह से मसला है सारा का सारा। आखिरत की अहमियत पैदा कर लें, ठीक है ना, दीन की तलब पैदा कर लें, अल्लाह ताला पे देखें कैसे आपको सप्लाई करते हैं, डिमांड पैदा करें ना, फिर सप्लाई भी होगी। डिमांड ही कोई नहीं है तो सप्लाई कहाँ से होगी। बहरहाल, तो उसी तरह से कोई अंग्रेजी दान इंजीनियरिंग की किताबों का मुताला करके इंजीनियर बनना चाहता है, तो दुनिया का कोई भी बाखबर इंसान उसे इंजीनियर तस्लीम नहीं कर सकता, इसलिए कि ये काम सिर्फ अंग्रेजी जुबान सीखने से नहीं आ सकता, बल्कि उसके लिए माहिर असातिज़ा के ज़ेर तरबियत रहकर उनसे बाकायदा इस फन को सीखना जरूरी है। जब डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कड़ी शराइत जरूरी हैं, तो आखिर कुरान और हदीस के मामले में सिर्फ अरबी जुबान सीख लेना कैसे काफी हो सकता है। जिंदगी के हर शोबे में हर शख्स इस उसूल को जानता और इस पर अमल करता है कि हर इल्म फन के सीखने का एक खास तरीका और उसकी मखसूस शराइत होती हैं, जिन्हें पूरा किए बगैर इस इल्म फन में उसकी राय मोतबर नहीं समझी जाती है। तो आखिर कुरान और सुन्नत इतने लावारिस कैसे हो सकते हैं कि उनकी तशरीह व तफसीर के लिए किसी इल्म व फन के हासिल करने की जरूरत ना हो, और इसके मामले में जो शख्स चाहे राय जनी शुरू कर दे। ठीक है, तो ये बात हजरत ने तो एक पैराग्राफ में तो ये समझा दी है, ठीक है ना, लेकिन जैसे कि पीछे भी बात हो चुकी थी जुमे के बयान में भी इसके ऊपर बात हुई है कि वी हैव टू बी द डेवल्स एडवोकेट इन दिस डे एंड एज, वी हैव टू बी द डेवल्स एडवोकेट। क्या मतलब डेवल्स एडवोकेट का? मतलब ये नहीं है कि डेवल के तरफ से जस्टिफिकेशन देना, डेवल को जो है वो मुकदमे के अंदर सजा से बचा लेना, बीइंग द डेवल्स एडवोकेट का हम ये मतलब हरगिज नहीं ले रहे हैं। बल्कि बीइंग द डेवल्स एडवोकेट का मतलब क्या है कि इसके ऊपर अब शैतान क्या क्या एतराजात पैदा करेगा, ठीक है ना, जिसको आपने ये बात सुना दी है। मिसाल के तौर पर हमारी इस क्लास के अंदर जो है वो 60 लोग सुन रहे हैं अगर इस क्लास को, तो अब जब उन्होंने ये वाला जुमला सुना, तो अब उनके जहनों के अंदर क्या क्या इसके ऊपर काउंटर क्वेश्चंस, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। अल्लाह जदाए खैर अता फरमाए हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहू को, के उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है इस वाले एस्पेक्ट के ऊपर भी। ठीक है, कि क्या क्या एतराजात लोग करते हैं या लोगों के दिलों में पैदा होते हैं और उनका क्या क्या जवाब, अल्लाह उनको हमारी तरफ से करोड़ों जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला ने, अच्छा अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कितनी मेहरबानी फरमाई है कि ऐसे उलमा जो हैं उन्होंने हमारे दरमियान रह करके ये सारे काम किए, अल्लाह की तरफ से उनको कैसी कैसी जो है वो उलूम व फ़नून और कैसी कैसी तौफीकें आता हूँ कि उन्होंने सब कुछ खोल खोल करके हमें बयान कर दिया। अगर अल्लाह ताला की मेहरबानी ना होती तो फिर तो ऐसे उलमा ना होते ना हमारे दरमियान, और ऐसी किताबें वो लिख ना पाते। बेशक उनके अंदर उलूम फ़नून होते, लेकिन वो किताब लिख करके हम तक उस इल्म को पहुंचा नहीं पाते। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मदरसे में जो है वो तकरीर करके मदरसे वालों को फारिग कर देते, बना देते आलिम, हम तक अवाम उन्नास के लेवल तक बात नहीं पहुंचा पाते अगर अल्लाह की तौफीक ना होती। ठीक है, अल्लाह ताला ने कितना एहसान किया हमारे ऊपर, अब हमारे ऊपर जो है ना ये सारा का सारा एहसान बोझ बन गया है, ये नेमत है अल्लाह ताला की हमारे ऊपर, और नेमत इस दुनिया के अंदर शुक्र अदा करने के लिए दी जाती है, वरना वो नेमत की बजाय जहमत बन जाती है। बहरहाल, वो हम इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से पढ़ेंगे। अभी जो मुकदमा है खाली, इसमें से हम पढ़ रहे हैं, तो इसको आगे पढ़ते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि कुरान करीम ने खुद इरशाद फरमाया है, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, और बिलाशुबा हमने कुरान करीम को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है। कुछ आपने क्या लिखा था कि करने वाले ये कह, हजरत
हजरत करने वाले ये कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, आवाम के लिए है। जी, ये भी कहते हैं और भी बहुत कुछ कहते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुफ्ती तकी इस्माइल साहब ने सबका जवाब दिया है। अच्छा, तो ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, लकद यस्सर कुरान लिज़्ज़िक्र, ठीक है ना, तो ये एक एतराज़ है जो कि लोग करते हैं कि जब कुरान करीम एक आसान किताब है, अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि हमने आसान कुरान को किया, तो इसकी तशरीह के लिए किसी लंबे चौड़े इल्म फन की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इस्तेदलाल एक शदीद मुगालता है, शदीद गलती है ये, जो खुद कम फहमी और सतहियत पर मबनी है। कम फहमी यानी आप समझ नहीं है, कम समझ है आपके अंदर, और सतहियत यानी आप बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे चीज को देख रहे हैं, ठीक है। हाई लेवल बस आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आपको सब समझ में आ गया। भाई समंदर की गहराई में क्या क्या चीजें मौजूद थी, तो वो जस्ट बिकॉज आप समंदर के लेयर से नीचे देख नहीं सकते, आपको नजर नहीं आ रहा, आप खाली ऊपर से बैठ करके जो है वो समंदर का नजारा कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं जी इसके अंदर कोई गहराई नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। तो अल्लाह के बंदे, जब समंदर में गोता लगाओगे तब तुम्हें पता चलेगा ना अंदर क्या है, ऊपर से बैठ करके तुम्हें पता नहीं चल रहा। तो अब ये तो नहीं है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा, दैट मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो ऐसे ही हो गया, प्रोफेसर साहब जो है वो कहते थे ये अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है, तो तालिब इल्म ने कहा कि आप क्या, आप दिमाग नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है क्योंकि नजर कोई नहीं आ रहा। उसने भी कहा था ना कि अल्लाह नहीं है क्योंकि नजर नहीं आता, उन्होंने आपका दिमाग नहीं है क्योंकि वो भी तो नजर नहीं आता, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपको नजर नहीं आता वो है नहीं क्या, ठीक है। तो ये कम फहमी और सतहियत की बातें होती हैं। वाकया ये है कि कुरान करीम के आयात दो किस्म की हैं, एक तो वो आयतें हैं जिनमें आम नसीहत की बातें, सबक आमोज वाकयात और इबरत व मौइज़त के मजामीन बयान किए गए हैं। मसलन दुनिया की नापायदारी, जन्नत व दोजख के हालात, खौफ खुदा और फिक्र आखिरत पैदा करने वाली बातें, और जिंदगी के दूसरे सीधे साधे हकायक। इस किस्म की आयतें बिला शुबा आसान, कोई शुबा नहीं इस बात में जो आसान है, और जो शख्स भी अरबी जुबान से वाकिफ हो वो उन्हें समझ कर नसीहत हासिल कर सकता है। मजकूरा बाला आयत में इसी किस्म की तालीमात के बारे में ये कहा गया है कि उनको हमने आसान कर दिया है, ठीक है। अब ये कोई कहे कि ये तो आप कह रहे हैं ना, क्या दलील है इस बात की कि इस आयत में अल्लाह ताला उन वाली आयत की ही बात कर रहे हैं, पूरे कुरान की बात नहीं कर रहे। तो अब हजरत इल्मी दलील दे रहे हैं, पहले अकली दलील दी, ठीक है, अब इल्मी दलील दे रहे हैं कि चुनाचे खुद इस आयत में लफ्ज लिज़िक्र, जिक्र नसीहत के वास्ते इस पर दलालत कर रहा है, ठीक है। यानी अब नकली दलील भी दे रहे हैं, यानी कुरान मजीद से खुद नकल करके देखो, कुरान मजीद के अंदर लिज़िक्र क्यों हमने इसको आसान किया है, जिक्र के लिए, नसीहत के लिए। यहां पे जिक्र का मानी नसीहत का है, यहां पे जिक्र का मानी कुरान नहीं है, क्योंकि वलकद यस्सरना अल-कुरआना लिज़्ज़िक्री, कुरान को हमने आसान कर दिया कुरान के लिए। क्या मतलब भाई, कुरान को हमने आसान कर दिया कुरान के लिए, क्योंकि लफ्ज जिक्र जो है वो कुरान के लिए भी आया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लनल ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। उस आयत के अंदर लफ्ज जिक्र जो है वो नसीहत के लिए नहीं है कि हमने कुरान मजीद की जो नसीहत वाली आयतें थी ना, हमने उनको हम ही ने नाजिल किया और हम उनकी इबादत करने वाले हैं, और बाकी जो जो शरी उसूलों वाली आयत थी उनकी हमने हिफाजत नहीं करनी है। उस वाली आयत के अंदर जिक्र से मुराद पूरा कुरान है, क्योंकि पूरा कुरान अल्लाह ने नाजिल किया, पूरे कुरान की हिफाजत अल्लाह ताला खुद ही करते हैं और करवाते हैं। इस आयत के अंदर जिक्र से मुराद पूरा कुरान नहीं है, बल्कि नसीहत, लफ्ज जिक्र यहाँ पे नसीहत के मानों में ही है, ठीक है। इसके बरखिलाफ दूसरी किस्म की आयतें वो हैं जो अहकाम व कवानीन, अकायद और इल्मी मजामीन पर मुश्तमिल हैं। इस किस्म की आयतों का कमा हक हु समझना, यानी जैसा उनको समझ जाएगा, हक है वैसा समझना, कमा हक हु समझना, और उनसे अहकाम व मसाइल मुस्तम्बत करना हर शख्स का काम नहीं, जब तक इस्लामी उलूम में बसीरत और पुख्तगी हासिल ना हो। यही वजह है कि सहाबा कराम की मादरी जुबान अगरचे अरबी थी और अरबी समझने के लिए उन्हें कहीं तालीम हासिल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम की तालीम हासिल करने में तवील मुद्दतें सर्फ करते थे। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अबू अब्दुलरहमान सलमी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि जिन हजरात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम की बाकायदा तालीम हासिल की है, मसलन हजरत उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह, यानी सिर्फ इन दोनों हजरात ने नहीं, और भी बहुत सारे सहाबा ने बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल की। उन्होंने हमें बताया कि जब वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम की 10 आयतें सीखते थे, तो उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ते थे जब तक इन आयतों के मुताबिक तमाम इल्मी और अमली बातों का इहाता ना कर लें। ठीक है, यानी जितना यानी गौर व फिक्र तदब्बर करते थे उनके ऊपर, नबी अलैहिस्सलाम से पूछते थे, तो वो जितना अवेलेबल उस वक्त उनको नॉलेज होती थी वो उसका इहाता अच्छे से समझ लेते थे, तब वो आगे बढ़ते थे। ठीक है ना, जैसे मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर है, जब तक पूरी तरीके से आपको समझ ना आ जाए आप आगे ना बढ़ें, तो इसमें फिर आपको टाइम लगेगा ना। जल्दी जल्दी सुपरफिशियली आप पढ़ते गए पढ़ते गए आगे बढ़ते गए पढ़ते गए, आप पूरी किताब पढ़ बड़ी जल्दी खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये उस तरह से नहीं करते थे। बाकी इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, अगर किसी को कोई सवाल वगैरह है तो हम ले सकते हैं, बस तो क्लास के दौरान भी हम लेते रहते हैं, लेकिन अगर खत्म होने के बाद भी, वरना क्लास का टाइम खत्म हो गया तो चलिए ठीक है, लगता है कि सवाल नहीं है तो यहाँ पे खत्म करते हैं। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।